हैं, कोई नया
पर
आया
ये
है?
तो ब्रो बहुत डीप में है ना, इतना तो डीप में आई डोंट थिंक सो जानते होंगे। थोड़ा आपका बैकग्राउंड और वो सब भी जाने, और आप कैसे करते हो, मतलब लेक्चर से तो सब जानते ही, इतने सारे लेक्चर आपके सुनने के बाद उनको इतना तो पता चल गया होगा कि आप कितने टैलेंटेड और कितने रिसर्च किया होगा और इतने अच्छे लेक्चरर हो और बहुत बढ़िया डिओटी। पर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, जो आपने क्या डिग्रीज और वो सब लिया है, तो वो थोड़ा बता दो।
ये एक्चुअली नए नए भक्त जो आते हैं उनके लिए है, इन सब के लिए नहीं है ये सब, अभी तो बहुत समय से है ये सब। डिग्री एक्चुअली क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है। भौतिक संसार में,
तो YouTube पे भी तो जा ही जाए। अच्छा
बहुत ज्यादा जहर पिया है मैंने, इन सब डिग्री का यही मतलब है, जो ज्यादा जहर पीता है उसके पास ज्यादा डिग्री होती है। भक्ति विनोद
ओके श्योर
ठाकुर
ब्रो।
के लिए तो ये सब जहर के जैसे ही है, वो यही बताते हैं ना।
जैसे आप ठीक
ये
समझे
सब
भाई।
इंट्रोडक्शन तो हम इसलिए रखते हैं जिससे कि कोई अगर एकदम नए है तो। ओके,
ओके श्योर श्योर।
यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, ओम प्रभु जानते हैं, सभी लोग तो जानते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं, वो सभी भक्त लोग हैं। नहीं कोई बात नहीं, आपकी तरफ से अच्छा है, बट क्या है ये डिस्क्वालिफिकेशन से है। भक्तों के सामने ये सब बताने मुझे अजीब लगता है कि हमने IIT ये NIT किया, ये किया, उसमें लगता है कि बिना काम की चीजों में टाइम भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट किया, उससे पहले भक्ति में आ जाते तो अच्छा रहता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
चलो
प्रभु जी, मैंने आपका रिएक्शन वीडियो देखा अभी रिसेंटली, तो मुझे वो वीडियो देख के
अच्छा
जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की याद आई। कैसे आप एक बार वो पास्ट टाइम थोड़ा सा बताएंगे
एनीवे
मेरे
अच्छा
को।
है। कौन सा वाला, जीव
जीव गोस्वामी
गोस्वामी और रूप
मतलब
गोस्वामी का?
जब जीव गोस्वामी, यस, जब जीव गोस्वामी
दो
ने भी
पास
रूप
टाइम है
गोस्वामी
सेम।
के, नहीं रूप गोस्वामी के अगेंस्ट कोई किसी ने ऑफेंस किया था, तो लाइक जीव गोस्वामी ने उनको बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, देन रूप गोस्वामी बिकेम वेरी एंग्री ऑन हिम।
हाँ, रूप कबीरराज का पास टाइम है। रूप नारायण थे कि रूप कबीरराज थे?
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं।
रूप नारायण, हाँ रूप नारायण थे वो। रूप कबीरराज तो कृष्णदास कबीरराज गोस्वामी के शिष्य थे, रूप नारायण थे। दो बार हुआ था एक्चुअली, एक बार रूप नारायण के साथ हुआ था, दूसरी बार वल्लभाचार्य के साथ हुआ था, और दोनों बार जीव गोस्वामी को भगा दिया गया था, रूप गोस्वामी ने भगा दिया था। रूप नारायण के साथ ऐसा हुआ था कि वो सब जगह जीतते हुए गए थे और अपनी विजय पत्री ले जाके वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास ले गए थे और उनको बताया था कि देखो मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी ने और सनातन गोस्वामी दोनों ने सोचा कि ये सब टाइम वेस्ट है, इसको क्या है, इसके सामने भगवान, इतने समय भगवान का नाम लेंगे तो अच्छा है। तो उन्होंने साइन करके दे दिए विजय पत्री पर कि जाओ ले जाओ, हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम हार गए। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, हालांकि वो सबसे बड़े विद्वान थे परंतु उन्होंने हार स्वीकार कर ली क्योंकि वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण का भजन करना चाहते थे। तो फिर वो उस जाते जाते उसको पता चला कि इनका एक भतीजा भी है, वो भी बहुत टैलेंटेड है, जीव गोस्वामी, और वो उसने सोचा उसके पास भी जाना चाहिए। तो जीव गोस्वामी के पास गए, उनको जाके बताया कि आपके दोनों चाचा ने डिफीट स्वीकार कर लिया है, विजय पत्री पे साइन किया है। तो जीव गोस्वामी ने चैलेंज कर दिया कि मेरे दोनों चाचा के सामने तो आप खड़े होने लायक भी नहीं हो, आप उनको हरा कैसे सकते हो, तो आप पहले मुझे हरा के बताओ, फिर देखते हैं मेरे चाचा के सामने आप क्या है कैसा है। तो 7 दिन तक वो डिबेट चला था, 7वें दिन जीव गोस्वामी ने उनको डिफीट कर दिया। और रूप गोस्वामी के पास जब वो गए तो जीव गोस्वामी के पार्ट में कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के लिए वो कार्य किया। पर रूप गोस्वामी उनसे नाराज हो गए, तो उनसे बोला था आप वृंदावन में रहने के लिए अधिकारी नहीं हो, वृंदावन से आप चले जाइए, ब्रज मतलब मथुरा में विश्राम घाट के पास में रहते थे। और दूसरे केस में क्या हुआ था, वल्लभाचार्य आए थे, भक्ति रसामृत सिंधु का इंट्रोडक्शन लिख रहे थे जीव गोस्वामी, तो उनको उन्होंने दिया था जीव गोस्वामी को लिखने के, जीव गोस्वामी ने उनको एडिट करने के लिए दिया था, चेक करने के लिए कि कितना सही है कितना गलत। तो जीव गोस्वामी उसी समय एक्चुअली वृंदावन आए थे, कुछ ही दिन हुए थे, तो ये वाली घटना पहले हुई थी और रूप नारायण वाली बाद में हुई थी, क्योंकि इस घटना में कुछ ही दिन हुए थे उनको। भक्ति रत्नाकर इस प्रकार से बताया जाता है कि ज्यादा दिन नहीं हुए थे, वो रूप गोस्वामी की सेवा कर रहे थे उस समय। और फिर जब उनको लगा कि वल्लभाचार्य लेके जा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु एडिटिंग करने के लिए, तो उनके पीछे पीछे वो जाते हैं और यमुना के किनारे उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं आप इसमें क्या एडिटिंग करेंगे। तो वल्लभाचार्य से बताते हैं तो वल्लभाचार्य को डिफीट कर देते हैं, जो जो चीज वो बताते हैं कि इसमें ये है वो डिफीट कर देते हैं। और वल्लभाचार्य खुद ही आके रूप गोस्वामी से बोलते हैं कि आपका भतीजा तो बहुत स्कॉलर है, बहुत विद्वान है। तो जब जीव गोस्वामी वापस लौटते हैं तो रूप गोस्वामी फिर से बोलते हैं कि वल्लभाचार्य मेरे गुरु के मित्र के समान है, चैतन्य महाप्रभु के मित्र हैं वो, और वो कृपा करके मेरा मॉडिफिकेशन करने गए थे, और तुमने अपनी बुद्धि अपना जो भी अपने घमंड के कारण तुमने उनको इस प्रकार से किया। तो फिर उनको भगा देते हैं और दोनों बार सनातन गोस्वामी आके बचाते हैं उनको, जीव गोस्वामी को। तो इससे एक चीज समझ में आता है कि हमें शास्त्र डिस्कशन उनके साथ करना चाहिए जो शास्त्र सुनने के लिए तैयार है। अगर कोई केवल लड़ाई करने के लिए है तो फिर नौवां अपराध भी हो सकता है, अश्रद्धालु के सामने हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। इसलिए भक्त लोग डिबेट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है और डिबेट में सामने वाला व्यक्ति बदलता नहीं है, क्योंकि वो लगातार अपराध करता रहता है। ओके, आज हम जो बुक पढ़ेंगे बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बुक है। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, ओरिजिनली ये पुस्तक जो है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसके द्वारा। ओरिजिनली ये जो पुस्तक है ये श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद छठवें अध्याय से ली गई है। सातवां स्कंद श्रीमद् भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है और भगवान कृष्ण के लीलाओं के डिस्क्रिप्शन के बाद सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन प्रहलाद महाराज की लीलाओं का आता है। तो भागवत में सबसे बड़ा डिस्कशन है ये, 10 चैप्टर प्रहलाद महाराज के बारे में बोले जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं तो बहुत लंबी है, 90 चैप्टर में है, परंतु उसके बाद सेकंड नंबर पे किसी अगर भक्त का चरित्र तो डिस्कस होता है भागवत में, तो प्रहलाद महाराज का चरित्र तो डिस्कस होता है। और ये पुस्तक हालांकि देखने में छोटी है परंतु श्रीमद भागवतम से डायरेक्टली इस पुस्तक को लिया है। श्रीमद भागवतम सप्तम स्कंद छठवें अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को जब विचार करते हैं, लंच के समय उनके मित्र लोग प्रहलाद महाराज के पास आते थे और आके प्रहलाद महाराज उनके साथ खेलने नहीं जाते थे, प्रहलाद महाराज उन सबको बिठाते थे और उनको प्रचार करते थे, क्योंकि उस समय टीचर्स नहीं होते थे। अगर टीचर्स रहते थे तो प्रहलाद महाराज को कठिनाई होती थी, मतलब टीचर्स अपोजिट थे संड और अमर के जो थे, इसलिए प्रहलाद महाराज लंच आवर्स में प्रचार करते थे। इसलिए प्रचारक को देखना चाहिए कि कौन सा समय अच्छा है प्रचार के लिए, किस समय पे व्यक्ति प्रचार कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद भागवतम पे जब लेक्चर दे रहे थे तो सातवें स्कंद के छठवें अध्याय पे भी लेक्चर दिए, और उन लेक्चर्स का कंपाइलेशन या उन लेक्चर्स में से कुछ कुछ पॉइंट्स लेके इस बुक को बनाया गया है, ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। तो हम कुछ कुछ इस बुक में से पढ़ेंगे, कुछ कुछ भागवतम में से पढ़ेंगे जहां पे प्रभुपाद जी ने उन श्लोकों को डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि ह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थम। वो श्लोक है जिससे भागवतम में स्टार्ट होता है, परंतु प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी पहले पहले एक दो पेजों में उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि वो श्लोक कहाँ से प्रारंभ होता है। और सबसे पहले प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, दो प्रकार के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, दैव विस्तरो सो प्रोक्ता में एक श्लोक आता है, विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद्विपर्यया। विष्णु भक्त देवता कहलाते हैं और विष्णु के अपोजिट जो है वो असुर कहलाते हैं। और उसी श्लोक का हिंदी इसमें लिखा है, दोनों में असुर देवता में मुख्य अंतर है कि देवता भगवान के प्रति अनुरक्त हैं, असुरगण नास्तिक हैं। असुरगण ईश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखते क्योंकि वो भौतिकतावादी हैं। एक्चुअली असुर लोग क्या समझते हैं कि विष्णु एक बहुत शक्तिशाली देवता है, और असुर लोगों को भी पता है जनरली कि विष्णु विष्णु हमसे ऊपर है, हम उनको नहीं मार पाएंगे, परंतु विष्णु पूर्ण भगवान है ये नहीं समझते हैं वो लोग। उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव है, तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को वो समान तरीके से लेते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे असुर जो हैं वो जब विष्णु के खिलाफ फाइट करने जाते हैं तो या तो ब्रह्मा की तपस्या करते हैं या शंकर जी की तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन दोनों के वरदान से हम विष्णु को मार सकते हैं, ये असुरों की फीलिंग होती है। तो विष्णु को एटर्नल नहीं मानते हैं वो। जैसे रावण ने हिरण्यकश्यपु ने भी प्रयास किया था भगवान हरि को मारने का, रावण ने भी प्रयास किया था, क्योंकि वो सब सोचते हैं कि शायद भगवान विष्णु को मारा जा सकता है। तो मनुष्य की ये श्रेणियां इस संसार में हमेशा रहती थीं, अलग अलग युगों में अलग अलग स्थान इनको दिया जाता है। सतयुग में ये देवता और असुर जो हैं ये अलग अलग लोकों में पाए जाते थे। त्रेता युग में देवता असुर दोनों अलग अलग एक ही लोक में, मतलब एक ही प्लेनेट पे अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, और द्वापर युग में देवता असुर एक ही फैमिली में पाए जाते हैं, और कलयुग में देवता और असुर एक ही व्यक्ति के अंदर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सतयुग द्वापर त्रेता सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग में डिफरेंस होता है। सतयुग में उनके लोक प्लैनेट्स अलग होते हैं, त्रेता युग में प्लैनेट सेम होते हैं, द्वापर युग में फैमिली सेम होती है, और कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। उसी के अंदर दैवीय गुण होते हैं, उसी के अंदर आसुरिक गुण होते हैं। कलयुग होने के कारण असुरों की संख्या बहुत बड़ी हुई है, परंतु कलयुग के जो असुर हैं वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं। कलयुग के छोटे छोटे मिनी असुर होते हैं। रावण कुंभकर्ण की तुलना में कलयुग के असुरों का कोई औकात नहीं है, चाहे ओसामा बिन लादेन हो चाहे कोई हो, ये सब छोटे छोटे डरपोक असुर हैं, एक्चुअली छुप छुप के वार करने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली असुर थे। तो कलयुग में असुर होते हैं परंतु इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। ये घटना जो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े असुर की घटना है। ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु से बड़ा असुर कभी कोई पैदा नहीं हुआ। भाष सातवें स्कंद के एक अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यपु टेरराइज द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का आतंकवादी था वो, कोई इंटरनेशनल आतंकवादी नहीं था, इंटर टेरेस्ट्रियल आतंकवादी था। अलग अलग प्लैनेट्स के राजा डरते थे, जिस लोक में हिरण्यकश्यपु का नाम आता था तो डर जाते थे। इंद्रदेव डर जाते थे, बस गंधर्व लोग, किन्नर, नरक, सभी लोग हिरण्यकश्यपु के नाम से डरते थे। तो बहुत फेमस आतंकवादी थे। और उनके जैसे कोई सोचे अगर बिन लादेन के घर में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, इसी तरह से हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद का जन्म हो गया। बहुत यूनिक घटना थी, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड आता है जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं देवता लोग कि हिरण्यकश्यपु को कैसे मारेंगे, तो भगवान यही बताते हैं कि इस प्रकार से मैंने प्लान किया है कि इसके घर में मेरे परम भक्त का जन्म होगा, और जब ये मेरे परम भक्त के ऊपर अपराध करेगा तब मैं इसको मार डालूंगा। तो इस तरह से प्रहलाद का जन्म होता है, और प्रहलाद जब 5 साल के थे तो उनको पाठशाला भेजा भेजा जाता है। एक्चुअली पाठशाला भेजने के पीछे भी कारण होता है। एक दिन प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु अपने राज सिंहासन बुला राज दरबार में बुलाते हैं, और उनकी माँ उनको तैयार करके भेजते हैं, और प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठा के उनके बालों को संवार के हिरण्यकश्यपु उनसे प्रश्न पूछते हैं कि बेटा तुमने अपने गुरुओं से सबसे अच्छी चीज क्या सीखी। तो वो सोचते हैं कि शायद कुछ तुतली भाषा में प्रहलाद कुछ बोलेंगे, तो प्रहलाद महाराज वहां पे बोलना चालू करते हैं, अपने पिता को असुर राज बोलते हैं, और बोलते हैं कि इस प्रकार से राज सिंहासन बैठे बैठे कोई जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। हित्वात्म पाकम गृह मंदकूपम वनम गतो यद हवे माश्रय, तो भगवान हरि का आश्रय लेके वन में जाना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु समझ जाते हैं कि इसकी बुद्धि को कोई ने डिस्टर्ब किया है, और फिर वो इसको स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल जब भेजा जाता है तो प्रहलाद महाराज और उनका प्रचार और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज अभी तो राजा के दरबार में रहते थे तो प्रीचिंग करने के लिए कोई मिलता नहीं था, और स्कूल में जाते हैं तो प्रीचिंग करने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं स्कूल का टाइम और कॉलेज का टाइम प्रचार का बहुत अच्छा समय होता है। एक बार हम निकल गए तो हमारे हाथ से बहुत लोग छूट जाते हैं। जैसे हम कॉलेज में जब रहते हैं तो बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, और कई लोग इसी तरह से रहते हैं हिरण्यकश्यप, ये असुरों के समान। असुर मतलब उनको कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं पता होता है, तो बहुत मौका मिलता है प्रचार करने का। तो लंच के समय में उनके शिक्षक बाहर चले जाते थे, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को इकट्ठा करके बोलते थे अभी हम कृष्ण भावनामृत की चर्चा करते हैं। और प्रहलाद महाराज फिर कहाँ से स्टार्ट करते थे, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधोगम असु अर्थदम। तो आपको श्रीमद भागवतम दिखाई दे रहा है, श्रीमद भागवतम समरी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? हाँ
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी बुक ही दिखाई दे रही है सर।
ओके, बुक दिखाई दे रही है।
यस,
ओके,
प्रहलाद
देने
महाराज के दिव्य उपदेश। या
लगा।
अभी 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 चेंज हो गया प्रभु जी। यस, नाउ इट्स करेक्ट।
ओके, तो जो बुक में आप जो देख रहे हैं शुरू के 3 पेजों में, वो इसी श्लोक का अनुवाद तात्पर्य है। सातवें कैंटो का 6वें अध्याय का पहला श्लोक, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधोगम। ये प्रहलाद महाराज का पहला श्लोक है। कौमार अवस्था मतलब 5 साल की उम्र। तो प्रहलाद बताते हैं 5 साल की उम्र से प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब होता है जो बुद्धिमान लोग हैं। प्रा मतलब प्रकृष्ट रूपेण ज्ञा, ज्ञा मतलब जानना। और पूरी तरह से जो बुद्धिमान लोग हैं उनको भागवत धर्म 5 साल की उम्र से सीखना चाहिए। अगर इस कैलकुलेशन में देखा जाए तो हम सभी लोग लेट हैं। मैं भागवत धर्म के संपर्क में आया था जब मैं 20 साल का था, 16 या 15 साल में लेट हुआ। और आप सभी लोग ऑब्वियसली, जैसे कोई 30 साल में आया होगा तो 25 साल लेट हुआ। हमारे ओम पे वो सबसे सीनियर हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि बचपन से भक्ति में आए, तो बचपन से वो कौमार के भी पहले भक्ति में थे। तो
नहीं नहीं
देखो,
भाई नहीं, हम भक्ति में नहीं है अभी तो। हम सिर्फ, हमें मिला था इस्कॉन, क्या है, भक्ति तो अभी 2-3 महीने से करना शुरू किया है, तो हमारा भी 2-3 महीने हुए। अभी माइनस कोटा में था, अभी 0 पे पहुंचे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन हो चुका था कल।
तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं उनको कुमार अवस्था से 5 साल की उम्र से आचार्य प्राज्ञ भागवत धर्म की पालन करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। तद अपि अध्रुवम अर्थदम, यद्यपि दुर्लभ है परंतु अर्थदम, मनुष्य जन्म में हम सबसे ऊंचा परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्लभ होने के बाद भी मनुष्य जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। सेम तात्पर्य, सेम पॉइंट्स आप देखेंगे उस पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक समाज वेदों को पढ़ने का और वैदिक सभ्यता का पालन करने का मुख्य उद्देश्य होता है भक्ति, मनुष्य जीवन में भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त करना। वैदिक सिस्टम के आधार पे बचपन से ब्रह्मचर्य आश्रम इंट्रोड्यूस होता है, जिससे कि व्यक्ति अपने बचपन से मनुष्य के क्रियाकलापों को समझ के भक्ति करने लगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं समझ के इतने ज्यादा क्रूअल होते हैं कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनाने की बजाय वो सिखाते हैं कि माँ माँ बच्चों को उनके गर्भ में कैसे मार दें। इट टीचेज मदर्स टू किल देयर चिल्ड्रन इवन इन द वूम ऑन द प्ली ऑफ कर्विंग द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। और अगर बाई चांस बच्चा बच जाता है तो उसको भोग के लिए पढ़ाते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, या तो माताएं लोग इतनी खतरनाक होते हैं कलयुग में कि बच्चों को गर्भ में ही मार देती हैं, और अगर बाई चांस बच्चा बच गया तो उसको फिर स्कूल में भेजते हैं जहां पे उसको सारी भोग की शिक्षाएं दी जाती है। तो वो इसमें लिखा हुआ है, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और सभ्य मनुष्यों के रूप में आप सभी उत्पन्न हुए, इसलिए आपको यह मनुष्य क्षण भंगुर, यह शरीर क्षण भंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। तो मनुष्य शरीर जो है, हालांकि बाकी सभी शरीर जैसे ही है, मनुष्य शरीर में कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है। और अगर खाने पीने सोने की चीजों को देखा जाए तो कई बार मनुष्य शरीर पीछे होता है। जानवर लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा अच्छे से सोते हैं, और उनको ऐसा 10-12 घंटे नौकरी नहीं करना पड़ता पैसे कमाने के लिए, उनको ऐसे ही मिल जाता है खाना सोना। और मनुष्य को उस सब के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो मनुष्य में कोई स्पेशलिटी नहीं है, परंतु शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य स्पेशल है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि भक्ति करना चाहिए। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, जीवन की अवधि, स्मृति, दया, धार्मिकता और बाकी सब विभूतियां घटती जाती हैं, सारी जो अच्छे गुण है वो घटते जाते हैं। इसलिए इस युग में ज्यादा आयु अनिश्चित होती है, तो क्षणिक है, हो सकता है कोई 100 साल तक जिए, कोई कम जिए, परंतु ये आशा है कि मनुष्य जीवन में हम जीवन की सबसे ऊंची सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धि होती है भगवान को जानना, जो कि दूसरे योनियों में संभव नहीं है। इसके आगे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि गतिम ही विष्णु दुराशया ये बही अर्थ मानिना अंधा यथान्धे उपनीय। उस श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य का जो वास्तविक स्वार्थ है, मनुष्य का जो वास्तविक गोल है, भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, और उस गोल को हम भूलते जा रहे हैं। वही अर्थ मानिना, अपने आप को एक्सटर्नली शरीर समझने के कारण हम उस गोल में को भूलते जा रहे हैं। और अंधा यथान्धे उपनीय माना, एक अंधा दूसरे अंधे को लेके जाता है और गड्ढे में गिराता है। यह इस संसार में इसी तरह से चल रहा है। आगे जो श्लोक बताया है, पराभवस्तावद अबोध जातो, इस भौतिक संसार के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। ये प्रहलाद महाराज बताते हैं, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन न जिज्ञासु न आत्मतत्व। उनको आत्मतत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि अबोध जातो पूरी तरह से अज्ञानता में घिरे रहते हैं। और भगवान विष्णु को समझने के लिए व्यक्ति को उत्सुक होना चाहिए। विष्णु सबसे अट्रैक्टिव है, सबसे प्रिय है, परंतु उतने प्रिय होने के बाद भी हम विष्णु से अट्रैक्टिव नहीं होते, विष्णु से आकर्षक नहीं होते। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि कहीं हमने पहले पढ़ा है, प्रभुपाद कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि हमें भगवान से अट्रैक्ट होना चाहिए, परंतु हम क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं इस संसार में कुछ वस्तुओं से लेके, ठीक है, कि हमारे हृदय की गंदगी के कारण हम भगवान से आकर्षित नहीं होते हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, कई बार उस उदाहरण को दिया जाता है। ओके, नहीं याद आ रहा। एनीवे, आपने सुना होगा मैग्नेट और आयरन पार्टिकल, बहुत बार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मैग्नेट और आयरन पार्टिकल, आयरन जो है ऑटोमेटिकली वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है, परंतु जब उसमें जंग लग जाती है, पूरी तरफ से धूल से भर जाता है, तो फिर उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो भगवान सबसे प्रिय हैं, भगवान से हमें आकर्षित भी होना चाहिए, परंतु हम नहीं हो पाते उसके। भगवान से आकर्षित होने की बजाय इस संसार में पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री के साथ मैत्री करना चाहता है, स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है, एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है मित्रता के लिए। तो हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं हमेशा, परंतु भगवान जो ऑलरेडी हमारे प्रिय मित्र हैं, जो हमारे लिए स्वाभाविक हैं, उनका हम नहीं समझ पाते हैं। जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं होंगे। भगवान बताते हैं गीता में कि मनुष्य पुण्य कर्म करे तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है, जहां पे करोड़ों साल व्यक्ति जीता है। ब्रह्मलोक की अवधि, ब्रह्मा जी का जीवन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन ही बहुत बड़ा होता है, 2000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे एक दिन into 365 into 100 years अगर देखेंगे, तो हमारी तुलना में वो ऑलमोस्ट अनंत इन्फिनिटी जैसा हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया है भगवद गीता में, ब्रह्मा का जीवन इतना बड़ा है कि हमारे पता नहीं कितने घंटे कितने वर्ष हैं, ये उनके 12 घंटों के तुल्य है। 43 लाख into 1000, ये उनके 12 घंटे के बराबर है। तो जैसे कोई चींटी होती है, चींटी कितने घंटे जिएगी या एक दो दिन जिएगी, उसको अगर बताया जाए कि कोई मनुष्य है जो 100 साल तक जीता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मनुष्य का जीवन इनफाइनाइट है। या आपने देखा होगा बरसात में कुछ कुछ कीड़े आते हैं, जो कि जब लाइट जलती है तो आते हैं और रात भर में मर जाते हैं, 4-5 घंटे उनकी आयु होती है, सुबह आप देखेंगे तो मरे हुए दिखाई देते हैं। अगर ऐसे कीड़ों से मनुष्य की आयु की तुलना की जाए, तो उनको विश्वास ही नहीं होगी कि मनुष्य की आयु इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। इसी तरह से मनुष्यों को विश्वास करना मुश्किल है, कि भगवान की आयु, ब्रह्मा जी की आयु इतनी ज्यादा कैसे है, परंतु ब्रह्मा जी की ये जो आयु है ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है आयु, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूरी आयु भगवान की केवल एक बार इनहेल और एक्सहेल करने में खत्म हो जाती है। तो जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और साथ साथ संसार के मालिक होने के साथ साथ हमारे लिए सबसे प्रिय ऑब्जेक्ट भी है। तो आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वास्तविकता में हम बोलते हैं कि हम शरीर हैं, और अगर शरीर को कुछ होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो केवल शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, परंतु उस शरीर के अंदर आत्मा जो है वो शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आत्मा के साथ भगवान जो है भगवान आत्मा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम अपने अपने आप से इतने अट्रैक्टेड क्यों हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के भिन्न अंश हैं। इसको ज्ञान बोला जाता है। इसके बाद आगे आ रहा है, बालक अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा, बालक रोता है किंतु जब वह स्त्री जो बालक की माँ है आती है, उसे गोद में उठा लेती है, तो वह बालक शांत हो जाता है। यह सब व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती, किंतु अपनी माता से उसका संबंध प्रकृति का नियम है। इसी तरह हम स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, यह आत्म संरक्षण है। इसके बाद नेचुरली जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वो प्रिंसिपल्स में उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम कई बार इन चीजों को पढ़े हैं, किस प्रकार से हम आत्मा हैं और आत्मा नेचुरली आत्मा भगवान का अंश है, ये डिस्क्रिप्शन हम कई बुक्स में देख चुके हैं। और जैसे हम हाथ या अंगुल की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि उस शरीर का अंग है, उसी प्रकार से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं क्योंकि यही भगवान की रक्षा विधि है। भगवान उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है, तो वह विकृत हो चुकी है। जैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ यहां आए तो वह तुरंत आ जाता है, और जैसे ही मैं चाहता हूं कि अंगुली मृदंग बजाए वह बजाने लगती है। यह प्राकृतिक स्थिति है। ये कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नॉर्मली हमारे इंद्रिय हमारे अंग हमारी बात मानते हैं, परंतु अगर उनमें विकार आ जाए तो फिर वो हमारी बात नहीं मानते। तो प्राकृतिक अवस्था में मानते हैं परंतु विकृत अवस्था में नहीं मानते हैं। इसी तरह से हम भगवान के अंश हैं तो भगवान की बात मानना हमारे लिए नेचुरल है, परंतु जब हम विकृत हो जाते हैं तो भगवान की बात नहीं मानते। तो दैट मीन्स जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारी अवस्था जो है वो विकृत अवस्था है, पागलपन की अवस्था है। दूसरा उदाहरण इसमें बताया गया है ऊंट का उदाहरण। ऊंट कटीली झाड़ियों के प्रति आसक्त होता है क्योंकि जब वह कटीली झाड़ियां खाता है तो झाड़ियां उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे रक्त चूने लगता है। वह अपने ही रक्त का आस्वादन करता है, तब वह सोचता है कि मैं आनंद पा रहा हूं। यौन जीवन इसी प्रकार से है, हम अपने ही रक्त का आस्वादन करते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद लूट रहे हैं। भौतिक संसार में अगर देखा जाए तो सामान्यतः व्यक्ति संसार में इसीलिए फंसा होता है क्योंकि पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण रहता है, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, और दोनों के संपर्क से जो यौन सुख होता है उससे हमें लगता है, लोगों को लगता है कि यही सबसे बड़ा सुख है, और उस सुख के कारण हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। अगर पूरे संसार में देखा जाए तो अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक वही कार्य कर रही है, और ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। लोग बोलते हैं कि यौन संबंध से खुशी मिलती है, परंतु पूरा संसार वही कर रहा है, कौन खुश है संसार में? तो ये एक छलावा है, भौतिक संसार का एक छलावा है, केवल अपने खून को वेस्ट करना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना और सोचना कि हम आनंद लूट रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, बद्ध जीव के लिए पागलपन का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम सोचते हैं कि अपने शरीर से हम यौन सुख करके खुश हो जाएंगे, परंतु इसकी तुलना यहाँ पे की गई है ऊंट से। ऊंट अपने खून को ही पीता है, सोचता है कि आनंद आ रहा है, उसी का टेस्ट मिलता है। तो और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी सुअर का देते हैं। आगे लिखा है, यदि सुअर और ऊंट बिना किसी विकट संघर्ष के इंद्रिय तृप्ति का भोग कर सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं किंतु यह हमारी चरम उपलब्धि नहीं होगी। चाहे सुअर हो या ऊंट अथवा मनुष्य, इंद्रिय तृप्ति भोगने की सुविधाएं प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है, अतः वे सुविधाएं जो आपको प्रकृति के नियम द्वारा मिलनी ही है उनके लिए आप श्रम क्यों करें? जिस तरह से दुख आता है उसी तरह से सुख भी आता है। ये भी श्लोक है, छठवें या सातवें नंबर पे आता है कि जैसे जिस तरह से दुख अपने आप आता है, दुख को तो हम बुलाते नहीं है परंतु दुख अपने आप आता है, उसी प्रकार से सुख अपने आप आएगा। सुख के लिए अलग अलग भागने की आवश्यकता नहीं है, दुख और सुख अपने आप आएगा। भगवान कृष्ण की भक्ति हमें अनुशीलन करनी है, उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो अपने आप डेवलप होगा। ये पहले चैप्टर में आता है। नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल ही बहुत अच्छा है, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। नाइस टाइटल, प्रभुपाद जी एक्सपर्ट थे एक्चुअली टाइटल देने में, कि किस प्रकार से भक्ति नहीं करके हम अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति भौतिक सुख बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है और कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन को वेस्ट कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, पहले श्लोक में ही हमने पढ़ा था। परंतु मनुष्य शरीर को अगर भौतिक भोग में लगाया जाए तो उसी तरह से माना जाता है जैसे कि ये कोई हम मर्सिडीज कार लेते हैं और उसको खेती करने के लिए खेतों में लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य शरीर को भोग में लगाना मतलब मर्सिडीज कार को खेतों में लगाना। तो खेतों में लगाने के लिए ट्रैक्टर अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति देखेगा कि ये मर्सिडीज कार को खेतों में लगा रहा है तो कार वापस ले जाएगा, ट्रैक्टर ला के दे देगा। तो इसी प्रकार से अगर हमारी भोग की इच्छा बहुत है तो भगवान बोलेंगे कि आपको मनुष्य जीवन की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करिए आप कोई जानवर बन जाइए, वो ट्रैक्टर जैसा शरीर है, हाथी शेर गधा कुछ भी बन सकते हैं, मनुष्य जीवन छिन जाएगा। मनुष्य शरीर मिलते ही साथ हमें उच्चतर बुद्धि मिलती है, उच्चतर चेतना मिलती है कि हम जीवन के लक्ष्य का प्रयास कर सकें, इस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकें। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाए, जिससे कि भौतिक संसार में हमारा उद्धार हो सके। और वैसे भी अगर कोई व्यक्ति 50 साल 100 साल तक जीता है तब भी उसको एक शरीर मिलता है, उस शरीर का भोग करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको भौतिक संसार के आधार पर दूसरा शरीर मिलता है। तो एक बार शरीर पाने के बाद और इंद्रियों को भोग करने के बाद हम फिर से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं। वास्तविकता में भगवद गीता तो ऐसा बताता है कि जैसे जैसे हम शरीर में भोग करते हैं वैसे वैसे हम अपने दूसरे शरीर को तैयार करते जाते हैं। इस जीवन के क्रियाकलापों से अगला जीवन का शरीर हमारा ऑलरेडी बनता जा रहा है, ऐसा नहीं कि मरते समय वो बनेगा, अभी से ऑलरेडी उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुका है, मरते समय वो पूरा तैयार हो जाएगा। तो पूरी जिंदगी हम कैसे जीते उससे पता चल जाता है कि अगला जन्म हमें क्या मिलने वाला है। मृत्यु के समय वो सब डिसाइड तो फाइनल होता है, परंतु जिंदगी भर हम जो करते हैं उसके आधार पर अगला शरीर मिलता है। तो हमें तुरंत, इसलिए अगर हम कोई व्यक्ति इन सच्चाइयों को जानता है तो उसको तुरंत कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति प्रगति कर पाए। कब तक ऐसा करना चाहिए, परीक्षित महाराज बता रहे हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला था, 1 सप्ताह में उनका शरीर गिरने वाला था, परंतु परीक्षित महाराज तो अच्छे थे कि उनको 7 दिन बताया गया था। हमें नहीं बताया गया है कि हमारा शरीर कब गिरने वाला है। हम जब भी सड़क पे होते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तैयार होना चाहिए। एक छोटा सा कोरोना हमें लग सकता है, उसके कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। कितने सारे लोग मर रहे हैं हर दिन, 4,000 लोग मर रहे हैं कम से कम ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर। तो मृत्यु हमेशा उपस्थित रहती है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग मर रहे हैं परंतु मुझे कुछ नहीं हो। सामान्यतः ये मूर्खता लोगों में रहती है, चाहे सब लोग मर रहे हों परंतु उसको लगता है मैं शायद स्पेशल हूँ, मैं तो बच जाऊंगा, यमराज को धोखा दे के निकल रहा हूँ। परंतु ऐसे कोई उसमें नहीं रहना चाहिए दुर्भावना में। जब सब कोई मरता है तो हम भी मरेंगे, हमारे दादा मरे हैं, हमारे परदादा भी मरे हैं, बाकी रिलेटिव्स भी मर रहे हैं, तो हम कैसे नहीं मरेंगे। हम भी मरेंगे, बाद में हमारे बच्चे मरेंगे, हमारे पोते मरेंगे। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि जब मृत्यु आए उसके पहले मृत्यु की तैयारी करें। सामान्यतः घरों में मृत्यु की चर्चा नहीं करते क्योंकि उनको लगता है मृत्यु की चर्चा नहीं करनी चाहिए, खराब टॉपिक है। परंतु कृष्ण भक्ति में हम सबसे पहले यही बताते हैं कि मरने के पहले तैयारी करो। कई बार लोग बोलते भी हैं कि आप ऐसे मरने मरने की बातें क्यों करते हो, अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। तो सामान्यतः सबसे अच्छी बात यही है कि आप मरने की तैयारी कर लो, बाकी अच्छी अच्छी बात करने का क्या फायदा, ऐसी अच्छी बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि कोई टेलीविजन देख रहा है, उसके बगल में एक एनाकोंडा सांप है, उसके तरफ मुंह खोल के बैठा हुआ है, और इस आदमी को ध्यान नहीं है कि एनाकोंडा उसके बगल में उसको खाने के लिए तैयार बैठा है, और वो टीवी में अच्छा सीरियल देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो ये पागलपन है। अभी कुछ ही क्षण में वो एनाकोंडा उनको उसको मार के खाने वाला है। इसी तरह से महाकाल, काल सर्प हमारे बगल में बैठ के हमें देख रहा है और हम अच्छा जीवन जी रहे, किसी भी समय वो आके फन मारेगा और मर जाएंगे। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मैं सभी के लिए समान भाव रखता हूँ, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही कोई मेरा विशेष मित्र है, और जो भक्ति करता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। और जैसे, और ये नेचुरल भी है, जैसे माता पिता सभी बच्चों का समान ध्यान रखते हैं, परंतु कुछ बच्चा जो, कोई बच्चा जो माता पिता पे ज्यादा आश्रित होता है, उनके उनको ज्यादा, उनके पास ज्यादा जाता है, ज्यादा चिल्लाता है, तब उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, नहीं तो सभी को समान ध्यान मिलता है। तो इसी तरह से भक्त जो है भगवान के प्रति ज्यादा आश्रित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान ऐसा नहीं कि भक्तों के साथ कुछ सौदा कर रहे हैं, या भक्त उनकी प्रशंसा करते रहते हैं तो भगवान भी खुश होते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान सभी के लिए समान है, चूंकि भक्त उनके ऊपर आश्रित होते हैं इसलिए भगवान उनकी देखभाल करते हैं। इसके बाद प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ऑलरेडी हमारी आयु कम होती जा रही है, वो ही पैदा जाके बताया है, सतयुग में 100,000 साल तक लोग जीवित रहते थे, त्रेता युग में 10,000 साल तक, द्वापर में 1,000 साल तक, कलयुग में 100 साल तक, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है आयु और घटती जाती है। अभी हम देख रहे हैं 100 साल कोई जीता नहीं है, 60-65 के बाद कब किसका विकेट गिर जाए कुछ पता नहीं रहता, हो सकता मैक्सिमम 75, उसके बाद कोई गारंटी नहीं, कभी भी हो सकता है। तो अगर हम मान भी लें, प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं कि अगर हम मान भी लें कि कोई व्यक्ति 100 साल तक रहता है, तो भी 100 साल में उसका, देखो ये लिखा है इसमें, आधा जीवन तो सोने और संभोग करने में चला जाता है, और दिन के समय वो क्या ढूंढता है कि पैसा कहाँ है, भोग करने की चीज कहाँ है, तो आधा समय सोने में निकलता है। 100 साल अगर जी रहा है तो 50 साल तो सोने में निकल जाता है, बाकी 50 साल में से भोग करने में निकलता है। और अगर देखा जाए कि शुरू के 20 साल तो कैसे निकलते पता नहीं चलता, पढ़ाई करते करते और खेल खेलते खेलते निकल जाते हैं, लास्ट के 10-15 साल बीमार होते में निकल जाते हैं, तो बीच के जो 20-25 साल है उसी में व्यक्ति काम करता है, भागता है, कठोर श्रम करता है, वो इसमें प्रहलाद महाराज बोल भी रहे हैं। साधारण व्यक्ति बालपन में भ्रमित रहता है और निरर्थक खेल खेलता रहता है, आप 20 वर्षों तक इसी तरह करते रह सकते हैं, तत्पश्चात जब आप वृद्ध होते हैं तो फिर से 20 वर्षों तक कुछ नहीं कर सकते। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती, आपने अनेक वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा, वे विश्राम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। अभी अभी हमें अपने एक शिष्य का पत्र मिला है जिसमें सूचित किया गया है कि उसकी दादी को लकवा मार गया है और वह गत 3.5 वर्षों से कष्ट भोग रही है, अतः वृद्धावस्था में 80 वर्ष की आयु होते ही सारा काम ठप्प हो जाता है। प्रभुपाद जी 80 वर्ष बहुत बहुत बड़ ज्यादा लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय शायद एज इस तरह से होगा, अभी तो और कम हो गया है, इसलिए प्रारंभ से लेकर 20 वर्ष की आयु तक सारे काम सारे का सारा समय नष्ट हो जाता है, और यदि आप 100 वर्षों तक जीवित भी रहें तो जीवन की अंतिम अवस्था के 20 वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह आपके जीवन के 40 वर्ष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। बीच की आयु में यौन क्षुधा इतनी प्रबल होती है कि इसमें भी 20 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इस तरह 20 फिर 20 तब 20, कुल 60 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। जीवन का यह विश्लेषण प्रहलाद महाराज द्वारा किया दिया गया है। हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में ना लगाकर उसे चौपट कर रहे हैं। तो लास्ट का कुछ 20-30 साल का समय बाकी है जो कि हम कृष्ण भक्ति में लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों नहीं लगा पाते हैं वो प्रहलाद महाराज अगले अध्याय में बता रहे हैं कि उनके मित्रों को, एक्चुअली जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार से बता रहे थे तो उनके मित्रों को भरोसा नहीं हो रहा था, और वो पूछते हैं कि हम तो नास्तिक हैं और हम कैसे इन सब चीजों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, आपको पता नहीं कहाँ से भक्ति मिल गई, आप भी तो असुर के घर में जन्म लिए परंतु आपको भक्ति मिल गई, परंतु हम कैसे स्वीकार करेंगे। देखिए इसमें बोल भी रहे हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, हमें खेलने दीजिए, हम तुरंत मरने वाले तो नहीं है, हमें कुछ आनंद लेने दीजिए, बाद में कृष्ण भक्ति करेंगे। हम भी यही सोचते हैं ना कि अभी नहीं बाद में अच्छे से करेंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि काम करने का समय अभी है, बाद में नहीं है, अभी नहीं कर रहे मतलब कभी नहीं कर पाए। तो ये टेंडेंसी बहुत है, पोस्टपोनिंग टेंडेंसी है कि बाद में हम करेंगे अभी नहीं, जहां पता है कि कृष्ण भावनामृत इंपॉर्टेंट है तो बाद में करने की क्या जरूरत, अभी करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये जो बालक और बालिकाएं कृष्ण भावनामृत में आए हैं वो मूर्ख है, प्रभुपाद के प्रभाव से उनका ब्रेन वॉश हो गया है और उन्होंने भोगने की सब वस्तुएं छोड़ दी हैं। मैंने जब आश्रम ज्वाइन किया था तो हमारे बहुत सारे लोगों ने बोला था, मेरे कई रिलेटिव्स ने, कि अभी तो भोग करने का समय है, तुम्हें शादी करना है, बहुत पैसा कमाना है, तुम ये क्या बुढ़ों वाला काम करना चालू कर दिए। कई लोग इस तरह से समझाते थे, बोलते थे बेटा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा वेल विशर हूँ, इस्कॉन वाले तुम्हें डुबा देंगे, बहुत लोग बोलते थे कि इस्कॉन वाले तुम्हें डुबा देंगे, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, जब खराब होगा तब तुम मेरे पास आओगे, कई लोगों ने मुझे बोला था इस प्रकार से। तो सामान्यतः लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति भोग नहीं कर पा रहा है तो उसका जीवन वेस्ट हो गया है, तो वास्तव में वैसा नहीं है। जो भी कृष्ण भक्ति में आता है वो सभी बुद्धिमान शिक्षित बालक बालिकाएं हैं, वो सम्मानित घरों से आते हैं, वो मूर्ख नहीं है, हमारे संग में सचमुच ही जीवन का आनंद ले रहे हैं, अन्यथा इस आंदोलन की अपना के लिए अपना मूल्यवान समय अर्पित ना करते, अर्पित क्यों ना करते। तो कृष्ण भावनामृत का आनंद क्या है लोगों को पता ही नहीं चलता है, लोगों को लगता है कि ये सफरिंग के जैसा है। और ये अजीब बात है, हम भक्त सोचते हैं कि बाहर वाले आदमी पागल हैं, उनको कृष्ण भावनामृत समझ में नहीं आ रहा है, बाहर वाले आदमी सोचते हैं ये भक्त लोग पागल हैं, ये लोग इनको सामान्य जीवन समझ में नहीं आ रहा। तो वो नेचुरल भी है, हम दोनों ही पागल बोले जा सकते हैं, वो भगवान की महामाया से पागल है, हम भगवान की योग माया से पागल है, परंतु पागल तो दोनों ही है, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं समझा पाते, हमेशा भक्त अभक्त अलग अलग चलते हैं। वैदिक नियमों के आधार से 5 साल की अवस्था से व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा दी जाती है, और चाहे कोई कितना भी बड़ा धनी क्यों नहीं हो, उसको गुरु के आश्रम में जाके एक दास के जैसा कार्य करना होता है। गुरु के गुरुकुल में जाने के बाद धनी गरीब कुछ फायदा नहीं, राजा का बेटा जाता है तब भी उसको वही काम करना पड़ता है जो गुरु आदेश देता है, और उसके बाद जब वो गुरु को आदेश इस प्रकार से पालन करता है, कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करता है, तब उसका हृदय वास्तविकता में सुख को प्राप्त करता है, प्यूरिफिकेशन शुद्धता को प्राप्त करता है, फिर सुख को प्राप्त करता है। और सामान्यतः इस संसार में सभी लोग पाई वाई के स्नेह में बंधे रहते हैं। इसी चैप्टर में एक आता है वो, तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, मनी इज स्वीटर देन हनी। सामान्यतः लोगों को लगता है कि पैसा जो है वो सबसे बड़ी मिठाई से भी ज्यादा स्वीट है, हनी से भी ज्यादा स्वीट है। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक स्नेह सबसे अच्छा लगता है, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, इसलिए वो समाज में सोसाइटी फ्रेंडशिप लव, तो उपाय बताते थे सोसाइटी फ्रेंडशिप लव उसी तरह से है जैसे मरुस्थल में एक बूंद पानी होता है, मरुस्थल में एक बूंद पानी से कोई संतुष्ट नहीं होता और ज्यादा प्यास बढ़ जाती है। भौतिक संसार में इसी प्रकार से सोसाइटी फ्रेंडशिप और लव होता है, क्योंकि वो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाते। रूपा जी बता रहे हैं, मैंने देखा है कि आपके देश में अनेक पुरुषों स्त्रियों का कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना प्रेम कुत्तों बिल्लियों में स्थापित कर रखा है, क्योंकि वे किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं, किंतु किसी को भी उपयुक्त ना पाकर अपना बहुमूल्य प्रेम कुत्ते बिल्लियों को देते हैं। अमेरिका में एक्चुअली ऐसा है, अमेरिका लंदन में, कि कुत्ते बिल्ली बहुत धनी होते हैं, कई बार लोग अपनी जमीन जायदाद कुत्ते बिल्ली को लेके जाते हैं। तो एक अमेरिका में एक कुत्ता था, उसके पास $100 बिलियन की संपत्ति थी, इतना बड़ा इतना धनी कुत्ता था, और लोग सोचते थे ये कुत्ते को हम अगर संभव उस कुत्ते को पटा लें तो इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसके नाम तो उतना पैसा था। तो लोग इसी तरह से करते हैं, मनुष्य को प्रेम नहीं करते हैं, कुत्ते बिल्लियों को अपना प्रेम देते हैं। कृष्ण भक्ति में हम सिखाते हैं कि अगर प्रेम देना ही है तो कुत्ते बिल्लियों को क्यों देना चाहिए, वास्तविकता में कृष्ण को देना चाहिए। तो अभी हम देख सकते हैं, हम कुत्ते को प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं। कुत्ते को प्रेम करेंगे तो मरते समय कुत्ते के बारे में सोचेंगे, वो कुत्ता बन जाएंगे। कृष्ण को प्रेम करेंगे, मरते समय कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण नहीं बनेंगे, कृष्ण के भक्त बनके उनके धाम में जाके सेवा करेंगे। तो चॉइस हमारी है कि हम भौतिक प्रेम चाहते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम चाहते हैं, कुत्ते बनना चाहते हैं या भगवान के भक्त बनना चाहते हैं। तो 5 साल में गुरुकुल में जाके सेवा प्राप्त करते हैं, 5 से 15 साल तक उनका ट्रेनिंग होता है, और अगर कृष्ण भावनामृत में उस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दिया गया तो वो फिर भौतिकतावाद की तरफ जाता है, और फिर उसको आध्यात्मिक जीवन विकसित करना कठिन होता है। भौतिकतावाद का मतलब है, भौतिक एक चीज समझना होगा, भौतिकतावाद और मायावाद ये 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, कई बार भक्त लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं मायावाद और मटेरियलिस्टिक अलग सेम ही चीज है। भौतिकतावाद मतलब भौतिक भोग की तरफ भागना, और मायावाद एक स्पेसिफिक फिलॉसफी है कि संसार में सब कुछ माया है, उसको मायावाद बोला जाता है। तो दोनों समान नहीं है, दोनों को एक चीज नहीं मानना चाहिए। भौतिकतावाद मतलब भोग की तरफ, संसार में भोग की तरफ जाना, और ऐसे लोग शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त नहीं करते हैं, कलुषित सुख का भोग करते हैं। श्रीमद् भागवत ये बताता है कि भौतिक भोग केवल पुरुष स्त्री के मिलाप से ज्यादा और कुछ नहीं है। शुरू में लड़का सोचता है वाह लड़की कितनी सुंदर है, लड़की सोचती है कि लड़का कितना अच्छा है, जब वो मिलते हैं तो उनके उनका जो कलमस है वो सही नहीं होता, और ज्यादा कंटेमिनेटेड होता है, और ज्यादा उनके उनके ज्यादा भौतिक संसार में लिप्तता बढ़ती जाती है। फिर वो उनको घर की जरूरत पड़ती है, बच्चे की जरूरत पड़ती है, फिर समाज, मैत्री, प्रेम, सबकी जरूरत पड़ती है। इस तरह से वो सॉलिडली संसार में फंस जाते हैं और अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति धोखा भी देता है, लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, ठगने के लिए भी तैयार हो जाता है, चोरी भी कर सकता है। उसको सब पता है, उसको ये भी पता है कि उसके घर वाले हमेशा साथ में रहने वाले नहीं है, और ये भी पता है कि वो ये जो पाप कर रहा है उसका फल उसी को मिलेगा, घर वाले उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। नारद मुनि ने वाल्मीकि से यही बोला था ना कि जाओ जाके पता करके आओ, जिसके लिए तुम ये सब काम कर रहे हो वो तुम्हारा पाप स्वीकार करेंगे, तो सबने मना कर दिया था। वो केवल हमारे पैसे का भोग करेंगे परंतु पाप हमें स्वीकार करके नरक में जाना हो। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो भौतिकता में बहुत ज्यादा लीन होते हैं वो कृष्ण भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए मनुष्य को भौतिकता में व्यक्ति लीन हो पाए उसके पहले कृष्ण भावना में का प्रयास करना चाहिए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि अगर कोई पहले से नहीं कर पाता है, जब जब उसको पता चले तब से चालू कर सकता है। हरे कृष्ण मंत्र का अगर वो जब करेगा तो जब से स्टार्ट करेगा तब से वो भक्ति में प्रोग्रेस कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं परंतु हम देख सकते हैं उनका कितना ज्यादा एडवांस लेवल है उनकी शिक्षाओं का, और इस ज्ञान में उन्नत होने के कारण वो अपने साथ वालों को उपदेश दे रहे हैं। और कुछ लोगों को ये उपदेश अच्छे नहीं लगेंगे, जैसे कोई व्यक्ति अगर शादीशुदा है, प्रहलाद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करो, तो वो सोचेगा कि मैं अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता, हम तो साथ साथ उठते बैठते बातें करते हैं, आनंद करते हैं, कैसे छोड़ सकता। प्रभुपाद जी खुद लिख रहे हैं, मैं वृद्ध हूँ, मेरी आयु 72 वर्ष की है, मैं विगत 14 वर्षों से अपने परिवार से विलग हूँ, तथापि कभी कभी मैं भी अपनी पत्नी और बच्चों के विषय में सोचता हूँ, यह स्वाभाविक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे वापस जाना होगा, यह ज्ञान है। जब मन इंद्रिय तृप्ति के विचारों में मग्न होता है तो यह समझना चाहिए कि यह मोह है। और वैदिक शास्त्र ये नहीं बोलते कि आपको शादी नहीं करना है, वो बताते हैं शादी करिए परंतु अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के बाद घर छोड़ना चाहिए, 50 वर्ष की आयु में अपना परिवार छोड़ दें, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रथम 25 वर्ष विद्यार्थी जीवन, 5 से 25 वर्ष की आयु तक कृष्ण भावनामृत की शिक्षा, और उसके बाद कृष्ण भावनामृत के सार को अगर कोई ग्रहण करता है तो ब्रह्मचारी आश्रम में कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो विवाह कर सकता है सुयोग्य पत्नी से और गृहस्थ जीवन बिता सकता है, और वहां भी उसको कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना होगा। इसलिए पारिवारिक जीवन गलत नहीं है, उसको गलत नहीं बोला जाता है, परंतु संसार में जो लोग मरते दम तक पारिवारिक जीवन में रहते हैं वो गलत है, क्योंकि अगर किसी को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा पहले मिली है तो 50 वर्ष की आयु में उससे एक्सपेक्टेड है कि वो अपने पुत्र की शादी कराने के बाद, घर को सेटल कराने के बाद वो वानप्रस्थ में चला जाएगा। वानप्रस्थ अगर वो पूरा करता है तो वो अपनी पत्नी को वापिस भेज देगा और वो संन्यास स्वीकार कर लेगा। तो इस प्रकार से वैदिक वर्णाश्रम पद्धति हमें सिखाती है। इसलिए जो व्यक्ति जिस समय भी कृष्ण भक्ति में आता है उसको कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करना चाहिए। कोई यह सोचता है कि मैं अपना खेल कूद का जीवन बिताने के बाद जब बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा तब मैं कृष्ण भक्ति में जाऊंगा, कृष्ण भावनामृत संघ में जाऊंगा, निश्चय ही उस समय आध्यात्मिक जीवन बिताया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रतिभूति कहाँ है कि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित रहेगा, कभी भी मर सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जब भी मौका मिला तुरंत कृष्ण भक्ति का फायदा उठाना चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कीर्तन का करना कीर्तन का प्रयास करें, नाम अपराधों से बचें और फल की प्राप्ति का प्रयास करें। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम उन समस्त देवियों एवं सज्जनों से जो कि हमारा व्याख्यान सुनते हैं या हमारा साहित्य पढ़ते हैं अनुरोध करेंगे कि घर पर खाली समय में हरे कृष्ण कीर्तन करें, हमारी पुस्तकें पढ़ें, यही हमारा अनुरोध है। हमें विश्वास है कि आपको यह विधि अत्यंत सुखकर तथा प्रभावशाली लगेगी। ओके, हमें विश्वास है कि आप सभी को ये प्रोसेस सुखकर और प्रभावशाली लग रही है। ओके, इसके आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो एंड करते हैं। कोई अनाउंसमेंट है तो बता सकते हैं, अगर कुछ अनाउंसमेंट है।
कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं।
ओके सो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक
हरे कृष्णा,
यस थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। यस
अच्छा, प्रभुपाद की किताब इतनी अच्छी है ही प्रभु जी की, अच्छा लगेगा चाहे कोई भी बोले, अच्छा लगने ही वाला है। मैं तो केवल माउथ पीस हूँ, कोई भी आके बोलेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा बहुत अच्छा है।
यस एंड जब प्रभु जी प्योर डिवोटी बोलते हैं तो फिर उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है।
अच्छा तो प्योर डिवोटी तो कोई नहीं हमारे बीच में अभी प्योर डिवोटी जिस दिन बोलेंगे तो देखा जाएगा, अभी तो पता नहीं, अभी तो आप मुझे बेयर करिए, प्योर डिवोटी जब बोलेंगे तो देखेंगे। ओके
यस प्रभु जी।